मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 5 जनवरी 2019 है और आज के इस afias.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस लाइफ मैनेजमेंट में मैं कल के ही विषय को आगे बढ़ाना चाहूंगा और कल हम बात कर रहे थे स्वाभिमान के बारे में, जिसे इंग्लिश में हम सेल्फ रेस्पेक्ट के नाम से जानते हैं। दरअसल कल मेरे पास बहुत सारे मेल आए और इस बात की मुझे बेहद खुशी है फ्रेंड्स कि जब भी मैं आप सबसे इस तरह के अनुरोध करता हूं कि आप सब इस टॉपिक पर विचार करें, अपने विचारों से मुझे अवगत कराएं और अपनी ओर से प्रश्न भी पूछें, तब आप लोग उसका पालन करते हैं और इसकी जानकारी मुझे आप सबके ईमेल के जरिए भी मिल जाती है। और डेफिनेटली स्वाभिमान टॉपिक पर जो हम लोग बात कर रहे थे उसके बारे में भी लगभग यही हुआ और कल मुझे ढेर सारे मेल इस पर मिले हैं और मुझे महसूस हुआ और बड़ी गहराई के साथ महसूस हुआ कि नहीं, आप सब इस विषय को बहुत अच्छे तरीके से समझना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं और यह मेरे लिए बेहद खुशी की बात थी। अब आप कहेंगे कि इसमें बेहद खुशी की बात क्या हो गई। बेहद खुशी की बात मैं इसलिए कह रहा हूं मित्रों कि देखिए, हम जो भारत के लोग हैं एक फ्यूडल स्ट्रक्चर में रहे हुए लोग हैं, हमारा जो समाज है वह सामंतवादी समाज रहा है, तो हमारे जो संस्कार बन गए हैं, हमारे जो विचार बन गए हैं, हमारे जो व्यवहार बन गए हैं, उनमें बहुत सारे सामंतवादी तत्व हैं। बावजूद इसके कि हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, डेमोक्रेसी सभी को समान मानने की बात करती है, बावजूद इसके कि जो हमारी फिलॉसफी है वह सबको समान मानने की फिलॉसफी है, सब हम कहते हैं कण कण में भगवान है, सभी जीवों में एक ही आत्मा है, इसके बावजूद हम सबको समान नहीं मान पाते। हमारा जो समाज है वो श्रेणीबद्ध समाज है, इसमें दुनिया भर के आप कह लीजिए स्तर बने हुए, छोटा बड़ा जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, धन के आधार पर, पता नहीं किन किन के आधार पर। तो इसका नतीजा क्या हुआ है? इसका नतीजा यह हुआ है कि हमारा मस्तिष्क भी बहुस्तरीय हो गया है, उसमें भी ढेर सारे लेयर्स हैं, उसमें पता नहीं कितने खाने बने हुए, अनगिनत खाने बने हुए हैं। जब भी हम किसी से मिलते हैं आप देखिए कि कैसे हम उसके बारे में धारणा बनाते हैं। सबसे पहले तो हम उसके बारे में एक धारणा बनाएंगे ना कि आदमी कैसा है। कभी आप जांच करके देखिएगा कि जो हम धारणा बना रहे हैं वो किन आधारों पर बना रहे हैं। क्या उसका आधार जो हमारी धारणा बन रही है वो व्यक्ति है या कि व्यक्ति से अलग हटकर के कुछ और है? ये कहां का रहने वाला है, ये किस पद पर है, ये किस जाति का है, इसकी कितनी उम्र होगी, इसके पिताजी क्या कर रहे होंगे? क्या आपको नहीं लगता कि हम अपनी धारणाएं इन आधारों पर बना लेते हैं और व्यक्ति गायब हो जाता है? व्यक्ति बेचारा कितना भी अच्छा हो, कितना भी ज्ञानी हो, लेकिन अगर वो जाति के आधार पर थोड़ा सा छोटा है तो हमारे दिमाग उसे उस रूप में स्वीकार नहीं कर पाएगा कि नहीं, ये कोई बहुत बड़ा आदमी होगा। और अगर कोई जाति के आधार पर बड़ा हो लेकिन व्यक्ति के स्तर पर वो घटिया हो, तब भी हम सोचेंगे कि नहीं नहीं यार, मतलब कुछ ना कुछ बात तो होगी। ये हमारे दिमाग का सबसे बड़ा संकट है। इसी संकट को फ्रेंड्स मैंने सामंतवादी संस्कार कहा है, सामंतवादी विचार कहा है। वो सामंतवादी विचार जो हमेशा व्यक्ति को छोटे बड़े के नजरिए से देखता है, अच्छे बुरे के नजरिए से नहीं, छोटे और बड़े के नजरिए से देखता है। और छोटे बड़े के पैमाने क्या होते हैं आप हम सब जानते हैं। वो सामंतवादी विचार जो श्रम की अवहेलना करता है। आप देखिए, क्या आपको लगता है कि हमारे यहां हाथ से काम करना एक अच्छी चीज मानी जाती है? नहीं, जो हाथ से काम कर रहा है वो घटिया आदमी होगा। जो ऑर्डर दे रहा है, जो आदेश दे रहा है, जो काम करवा रहा है हाथ में हंटर लेकर के, वो बड़ा आदमी है, क्योंकि उसके पास अधिकार है, उसके पास ताकत है। यानी कि हम अधिकारों का सम्मान करने वाले लोग हैं ज्यादातर मामलों में, योग्यता का नहीं। और ये फ्यूडल माइंड काम ही इस तरीके से करता है। और याद रखिए कि मैं केवल भारत की बात इसलिए कर रहा हूं यहां क्योंकि हम भारतीय हैं, अदरवाइज और भी बहुत सी सोसाइटीज रही हैं, दुनिया के दूसरे देश रहे हैं जहां ये फ्यूडल कल्चर रहा है, खासकर एशिया में तो बहुत ही ज्यादा, यूरोप के भी कुछ देशों में ऐसा रहा है, लेटिन अमरीकी देशों में भी रहा है। ऐसा मत समझिएगा कि सिर्फ भारत में ही है, लेकिन है सो है, वो हमारा इतिहास रहा है, हमारे जीवन का हिस्सा रहा है, हमारे जीवंत समाज ने उसमें सांस ली है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन हम एक काम जरूर कर सकते हैं कि हम अपने उन सारी पुरानी बातों, पुराने विचारों, पुराने व्यवहारों का तार्किक रूप से विश्लेषण करें और बढ़ते हुए समय के साथ अपने कदम को मिलाने की कोशिश करें। इतना तो हम कर ही सकते हैं और ये खुशी की बात है कि ऐसा किया भी जा रहा है। और सच पूछिए तो आप लोगों ने इतने सारे मेल के जरिए मुझसे जो स्वाभिमान के बारे में और जानने की कोशिश की है, इसे मैं अपने आप में इस बात का प्रमाण मानता हूं कि हां, आपकी भी कोशिश यही है कि हम अपनी इन चीजों को समझें। बहुत अच्छे तरीके से समझने के बाद हम देखें कि हमें इसके साथ कैसे व्यवहार करना है, हम इसे कैसे दुरुस्त करें, इस तरीके से दुरुस्त करें कि हमारी अपनी जिंदगी आगे बढ़ सके, बेहतर हो सके, हमारे लोगों की जिंदगी आगे बढ़ सके, बेहतर हो सके, और कुल मिलाकर के यह कि हमारा समाज और हमारा देश बेहतर हो सके, हमारे आने वाली पीढ़ियां बेहतर हो सके। इसीलिए तो आप लोगों ने यह प्रश्न पूछा, अदरवाइज आप सीधे सीधे मेरी बात को कंडम कर सकते थे कि नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है, आप गलत कह रहे हैं, स्वाभिमान एक बहुत बड़ी चीज होती है। आप मैंने जो राम और आपको उदाहरण कृष्ण के आपको दिए थे, राम के तो नहीं दिए थे, मैंने कृष्ण के उदाहरण दिए थे, तो आप उन्हें आउटराइट रिजेक्ट कर सकते थे। भगवान विष्णु के भी आप अलग तरीके से व्याख्या कर सकते थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप सबने बड़े संतुलित तरीके से मेरे उन उदाहरणों को लिया है। और मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि उन उदाहरणों पर और गंभीरता से विचार करें, जब आप गहराई में जाएंगे तो आपको नए नए कोण दिखाई देंगे। फ्रेंड्स, सच पूछिए तो जो अभिमान है और जो स्वाभिमान है, जिसको हम घमंड कहते हैं, गर्व नहीं घमंड कहते हैं, और जिसे हम स्वाभिमान कहते हैं, मुझे उनके बीच में, इन दोनों के बीच में बहुत ही थिन, यानी कि बहुत ही पतली, बिल्कुल झिल्ली जैसी लाइन खींची हुई दिखाई देती है। मतलब एक ऐसी लाइन जो है तो, लेकिन उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है, उसको समझना बहुत मुश्किल है, जो दिखाई ही नहीं दे रही है। तो बट नेचुरल है कि हम उस रेखा को, उस विभाजक रेखा को कब पार करके इस तरफ से उस तरफ चले जाते हैं, जान ही नहीं पाते। और याद रखिए कि जो मैं कह रहा हूं इस तरफ से उस तरफ, उसमें होता क्या है, हम स्वाभिमान से अभिमान की तरफ चले जाते हैं। याद रखिए, हम अभिमान की तरफ से स्वाभिमान में नहीं आते, हम हमेशा स्वाभिमान की तरफ से चलते हैं और अभिमान की तरफ पहुंच जाते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब भी कोई व्यक्ति, हमें ऐसा लगता है कि वह हमें अपमानित कर रहा है, हमारे रेस्पेक्ट को ठेस पहुंचा रहा है, मुझे इग्नोर कर रहा है, या यूं कह लीजिए कि मुझे प्रॉपर रिस्पांस नहीं दे रहा है, यहां तक कि वह मेरे स्वार्थ को चोट पहुंचा रहा है, मुझे गुस्सा दिला रहा है, मेरी बात नहीं मान रहा है, और यहां तक कि मेरी बात नहीं सुन रहा है। आप देखिए कि जब आप दुकान पर जाते हैं या सब्जी खरीदने जाते हैं, दो तीन बार आप उससे कहते हैं कि भैया ये चीज देना, ये चीज देना, और मान लीजिए कि वो आपकी बात नहीं सुन रहा है, तो आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है, जिसे आप स्वाभिमान कह रहे हैं, हम सब स्वाभिमान कह रहे हैं, उसको ठेस पहुंच जाती है। आपको लगता है कि ये मेरी बात नहीं सुन रहा है, ये मुझे इग्नोर कर रहा है, और ठेस पहुंच जाती है। और अगली बार जब आप कहते हैं कि भैया मुझे ये देना, तो आपकी टोन बदली हुई होती है, या हो सकता है कि आप नाराज होकर के वहां से दूसरी जगह चले जाए, बड़बड़ाते हुए। आप इन व्यवहारों का जायजा लीजिए तो आपको बड़ी खूबसूरत चीजें मिलेंगी, खासकर हम सबके अपने दिमागों के बारे में। और ये जब दिमाग की मैं बात कर रहा हूं, तो डेफिनेटली सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कैसे चीजें भरी हुई हैं। और जो शुरुआत में मैंने आप सबसे कहा कि उसमें पूरा का पूरा सामंतवादी तत्व भरा हुआ है, सामंतवादी माल भरा हुआ है, मसाला भरा हुआ है, और वो कहीं ना कहीं उभर करके सामने आ जाता है। उससे मुक्ति पाना मित्रों इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि वो हमारे चिंतन का, हमारे विचारों का और व्यवहार का एक हिस्सा बन चुका है, एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। लेकिन मैं यहां ये भी कहूंगा कि यह असंभव नहीं है, कठिन है, लेकिन असंभव बिल्कुल भी नहीं है। तो मित्रों, एक बहुत ही झिल्ली, बहुत ही पतली सी रेखा है, और पतली सी रेखा का हम इस्तेमाल किस रूप में करते हैं, दीवाल तो है ही नहीं। अगर दीवाल होती तो हम बिल्कुल एकदम स्पष्ट रूप से अपने को डिवाइड करके चलते, ये मेरा स्वाभिमान है, ये मेरा अभिमान है, मुझे अभिमान से बचना है, लेकिन मुझे स्वाभिमान की रक्षा करनी है, दीवाल वहां नहीं है। तो होता क्या है, होता यह है कि हम हमेशा अपने को डिफेंड करने के लिए, अपनी रक्षा में, आप कह लीजिए कि अपने पक्ष में हमेशा होता तो वह अभिमान है, लेकिन ज्यादातर हम उसे स्वाभिमान कह देते हैं। होता वो स्पष्ट रूप से अभिमान है, मतलब मुझे ऐसा लगता है, मैं आपको उदाहरण के जरिए समझाऊंगा भी, क्योंकि आज इतना वक्त नहीं है कि मैं उस पर बात कर सकूं, लेकिन मित्रों ये बहुत प्यारा विषय है और मुझे लगता है कि बहुत जरूरी विषय भी है, इस पर हम लोग आगे भी बात करेंगे। तो मैंने कुछ चीजें प्रैक्टिकली आपको बताई हैं और मैं चाहूंगा कि आप उनको वाच करें। मैंने कहा कि होता तो वह अभिमान है, लेकिन हम उसे स्वाभिमान कह के अपने पक्ष को रखते हैं, क्योंकि लोग, समाज स्वाभिमान को बुरा नहीं मानते, अभिमान की आलोचना करते हैं। तो राइट फ्रेंड्स, तो आज इस विषय को मैं यहीं समाप्त करने की आप सबसे इजाजत चाहूंगा। कल इस पर हम लोग फिर बात करेंगे, खूब मजेदार मजेदार बातें करेंगे और इसे अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। अब मुझे इजाजत दें, नमस्कार।